हमारे बीच डॉक्टर सविता दीदी आपकी ही तरह परिवार से दो कुमारियां बहुत बहुत लगन बाबा के प्यार में मगन, इस तरह की ये बहनें जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं, पढ़ते भी रहें, डॉक्टर भी बने और इसके साथ साथ बाबा का नाम भी रोशन किया। आपकी तो बहुत विशेषताएं हैं, एक एक विशेषता का क्या वर्णन करें। जब जब इनसे मिलने का पास बैठने का मौका मिलेगा आप भी पहचान जाएंगे। किशोर अवस्था में ही ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद से बाबा की सेवा करते रहे, डॉक्टर बनकर बाबा के घर आए और बाबा ने बिल्कुल अपने दिल के, अपने सीने के, अपनी आंखों के सामने रखा। दादी, बड़े दादी प्रकाश मणि जी, आप उनके पर्सनल फिजिशियन भी रहे, ग्लोबल हॉस्पिटल में भी सेवाएं दी, महिला प्रभाग में भी आप सेवा दे रहे हैं और अपने देश में ही नहीं विदेशों में जाकर भी आपने इस ज्ञान ज्योति को सब तरफ आलोकित किया है। बहुत मीठे स्वभाव की धनी, बहुत शांत, बहुत धैर्यवत डॉक्टर सविता दीदी आज हमें ये समझाएंगे कि बाबा की छत्र छाया सेफ्टी का साधन कैसे है। क्योंकि हम सोचते हैं कि धन अधिक हो वो उसके कारण सेफ्टी है, संपर्क संबंध अच्छा हो, लौकिक रिश्तेदार अच्छे हो, वो सेफ्टी का साधन है। दुनिया में ऐसा समझते हैं, नॉलेज अच्छी हो वो भी सेफ्टी का साधन है, लेकिन बाबा की छत्र छाया सबसे मजबूत सेफ्टी का साधन है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स और अनुभवों सहित हमारे बीच शेयर करेंगे आदरणीय सविता दीदी जी।
ओम शांति, सभी बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। हम वर्तमान समय जिस संसार में रहते हैं वो संसार समस्याओं से भरा हुआ है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन जीवन में कोई समस्या नहीं आती है, कोई परिस्थिति नहीं आती है या कोई विघ्न नहीं आता है। और जो भी परिस्थिति उत्पन्न होती है उसका हमें सामना करना ही है, लेकिन हम कैसे उसका सामना करते हैं और कैसे विजय प्राप्त करते हैं ये हमारी क्षमता है। और ये क्षमता कैसे बढ़ती है, करते हैं सभी, लेकिन जब बाबा की याद हमारे साथ है, जो सर्व समर्थ है, सर्व शक्तिवान है, वो हमारे साथ हैं, तो फिर हम निर्भय होते हैं, तब हमारी सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं जो बॉडीगार्ड के साथ होते हैं, जिन्हें सुरक्षा गार्ड कहते हैं, और वो कहीं जाते हैं तो बहुत निर्भय होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे साथ रक्षा करने वाले वो पूरे हथियारों से लैस हैं, तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसे ही बच्चे जब माँ बाप के साथ होते हैं तो अपने आप को बहुत सेफ समझते हैं। माँ बाप के साथ हों या कोई भी अपने के साथ हों, जो संबंध की बात कही, तो सेफ समझते हैं। और कोई भी बात आती है तो माँ बाप को कह देते हैं, कोई भी ऐसी बात जो उनके लिए प्रॉब्लम है या चिंता है आते हैं, माँ बाप को सुनाते हैं और खुद निश्चिंत हो जाते हैं। फिर भले माँ बाप चिंता करते रहें कि इससे कैसे निपटना है, ऐसे ही करते हैं बच्चे। तो हम सब भी कौन हैं, किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए? पहले तो हमारा साथी कौन है? जो सर्व समर्थ है, उसकी याद ही हमें निर्भय बनाती है। और फिर अपनी हर बात, अपनी हर प्रॉब्लम हमने बाबा को दे दी, तो बाबा को दे दी तो हम निश्चिंत हो गए। तो हम देखते हैं कि जरूर बाबा की मदद मिलती है, भले ही उसके मदद देने के तरीके थोड़े न्यारे हैं, क्योंकि वो तो निराकार हैं। अब साकार जैसी मदद कि मैंने किसी अपनी फ्रेंड को कोई बात कही और उसने उसी समय अपनी राय मुझे दे दी कि क्या करना चाहिए, हाँ, या उसने अपना साथ मुझे दिया, जिस तरह भी वो दे सकते हैं, कोई साधन से मदद कर सकते हैं या और भी कोई वस्तु से मदद कर सकते हैं। तो बाबा का मदद देने का तरीका इस तरह का नहीं है, वो किसी को निमित्त जरूर बना देता है। तो हम सब अपने जीवन में अनुभवी हैं कि जब भी हम बाबा को याद करते हैं तो उसकी याद कैसे हमारे लिए मदद हाजिर करती है, यानी छत्र छाया बनती है। तो मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आपके सामने सुनाना चाहती हूँ कि विकट स्थिति हो जाए हमारे सामने और बाबा के ऊपर हम छोड़ दें। तो मैं पिछले साल उड़ीसा में, एक राउरकेला शहर है, वहां गई थी, सेवा में गए थे। तो जब हम लौट रहे थे वहां से, तो हमारी जो फ्लाइट थी वहां रांची से थी, तो रांची की एयरपोर्ट पे वो फ्लाइट का गेट चेंज हो गया, लेकिन हमें पता नहीं चला। जो बोर्डिंग पास पर गेट लिखा था, हम उस गेट पर जाकर बैठे थे। अब उन्होंने अनाउंसमेंट किया या नहीं किया वो भी पता नहीं चला, क्योंकि कई एयरपोर्ट होते हैं जो साइलेंट होते हैं, वहाँ अनाउंसमेंट नहीं होता, आपको या तो मैसेज में देखना होता है। तो हमने सोचा ही नहीं कि गेट चेंज हो जाएगा, कभी ऐसा अनुभव नहीं था, तो ध्यान नहीं दिया इस बात पर। और हम लास्ट तक, जो फ्लाइट उड़ने का टाइम हो गया तब तक उस गेट पर देखते रहे कि बोर्डिंग नहीं हो रही। तो ऐसे सोच लिया कि फ्लाइट लेट हो गई, शायद इसलिए, क्योंकि हो जाती है कई बार लेट। लेकिन जब लास्ट मोमेंट था, मैंने एक मिनट था फ्लाइट उड़ने के टाइम में, तब हमारे पास फोन आया, क्योंकि जब टिकट बुक कराते हैं तो फोन नंबर देना होता है। तो उन्होंने फोन नंबर देख के हमें फोन किया कि क्या आप एयरपोर्ट पर हैं? तो फ्लाइट की बोर्डिंग हो चुकी है और वो उड़ने को तैयार है, और अगर आप एक मिनट में नहीं पहुंचे तो आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। अब वो गेट दूर था, इतने पास पास भी नहीं होते हैं। तो उसी समय एकदम, क्योंकि क्विक निकलना था, तो एक बैग छोड़ दिया वहीं पे। हमारे साथ एक भाई थे और उनको दे रखा था, तो सामान उठाया वहां से और तुरंत जल्दी जल्दी जाने लगे, तो बैग छोड़ दिया। और जो बोर्डिंग पास था वो उसी पर्स में था। वहां पहुंचे तो फ्लाइट का गेट बंद करने वाले थे वो, तो मैंने बोर्डिंग पास निकाला कि मैं दिखाऊं इनको, लेकिन है ही नहीं, क्योंकि वो तो मैंने देखा, अरे पर्स ही नहीं आया, वो भाई तो पर्स नहीं लेके आया। तो मैंने बोला कि वो वहां उस गेट पर रखा है, हम एक मिनट में ले आते हैं। तो कहते नहीं नहीं एक मिनट नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आप रुक जाओ, ये फ्लाइट तो जाएगी। तो उन्होंने स्टॉप कर दिया, हमको जाने नहीं दिया, और फ्लाइट का गेट बंद हो गया, फ्लाइट छूट गई, मतलब छूट गई हमारे लिए। और इस तरह से था, रांची से कलकत्ता आना था, कलकत्ता से अहमदाबाद, तो कनेक्टिंग फ्लाइट थी, उसमें 2-3 घंटे का गैप था। तो मैं निस्संकल्प रही, मैंने कहा कि हमने जानबूझकर, हमसे मतलब ऐसी गलती तो नहीं की है, अब ये गेट चेंज हुआ पता नहीं चला तो मैंने बाबा के ऊपर छोड़ा, मैंने कहा बाबा वो कलकत्ता वाली फ्लाइट तक आपको कैसे पहुंचाना है वो आप जानो, ये तो छूट गई। तो मैं जैसे ही घूमी, हम वहां से घूमे, वो जो एयर होस्टेस थी जो बोर्डिंग करवाती है उसने मुझे बुलाया और उसने कहा कि आप मेरे साथ आओ। तो हम चले गए उसके साथ, तो वो मुझे एक ऑफिस में लेकर के गई और कहा कि आप यहाँ वेट करो और जब तक हम नहीं कहें तब तक आप यहाँ वेट करो। तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो ऐसा वेट क्यों करवा रही है हमको, फिर भी हम रहे वहाँ। फिर उसने अपने जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था उनसे बातचीत की, कम्युनिकेट किया, मतलब उसको क्या टच हुआ क्या समझ में आया वो ही जाने, लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर उसने फिर से हमसे सिक्योरिटी चेक कराया, वहां से लेके गई। तो मैंने कहा कि ये सब क्या आप दूसरी फ्लाइट हमारे लिए करवा रहे हैं, तो वो कहती है नहीं, जो फ्लाइट रनवे पर चली गई है वो फ्लाइट आपके लिए वापस आ रही है। तो इतना आश्चर्य हुआ मुझे कि मतलब वहां एक मिनट नहीं रुकने दे रहे थे, कि एक मिनट भी नहीं, कि बोर्डिंग पास वहां से वो हम थैला उठाकर ले आए और चेक इन कराने, और अब एक घंटा हमारे कारण फ्लाइट लेट होगी क्योंकि वो रनवे से वापस आएगी, हम फिर से उसमें बैठेंगे और फिर जाएगी। तो किसकी कमाल थी, जैसे ही बाबा को बोला बाबा ने उनको टच करके अपना काम करा दिया और बिल्कुल उसी फ्लाइट में हम आए कलकत्ता में, और हमारा जो था शेड्यूल जिस हिसाब से वो हो पाया। एक दूसरा अनुभव मेरा था, मैं जब एक बार विदेश गई, माना ये ऐसी स्थितियां हैं जो असंभव से कैसे संभव हो जाता है, जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसी मदद हमें अनुभव होती है बाबा की जो कोई इंसान नहीं कर सकता, पर किसी को बाबा निमित्त बनाता है। तो ऐसे ही एक बार, ये 2009 की बात है, जब पहली बार मेरा अमेरिका जाना हुआ और वहाँ न्यूयॉर्क में मैं थी। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन एक स्थान है, वहाँ अपना सेंटर है, तो वहाँ दो दिन का स्टे था मेरा और बहन ने वहाँ शाम को पब्लिक प्रोग्राम रखा था। दिन का समय वो मुझे साइट सीन के लिए लेकर के गई। न्यूयॉर्क में वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, तो वो देखने की जगह है वहाँ। और ट्विन टावर जो ये एरोप्लेन ने क्रैश कर दिया था आतंकवाद के कारण, जो उनकी दो तीन जगहों पर हमला हुआ था, तो वो स्थान भी उसके नज़दीक था। ऐसे कोई दो चार स्थान वो दिखाने के लिए लिखे गई। तो हम वो देख करके लौट रहे थे, तब वो जो ट्विन टावर की जगह थी, उस दिन उसका 11 सितंबर होती है उसकी बरसी, तो वो 11 सितंबर ही था और 11 सितंबर के दिन वहाँ बहुत भीड़ थी, लोग श्रद्धांजलि देने आए हुए थे जिनके लोग मर चुके थे उसके अंदर, तो बहुत फ्लावर्स वगैरह वो वहाँ रख रहे थे उस स्थान पर, अभी कुछ बना नहीं था, सिर्फ ऐसे ही जमीन थी। तो मैंने देखा तो मैं उस जगह का फोटो लेने लगी, कैमरा था मेरे पास और बहुत भीड़ थी, तो वो भीड़ में जो बहन मुझे लेकर आई थी गाइड बन करके सेंटर की बहन, वो कहीं मिस हो गई। तो जब कैमरे से मेरा ध्यान हटा तो मैंने देखा कि वो बहन कहाँ है, दिखी नहीं रही है। ढूंढा मैंने उसको थोड़ा आगे पीछे इधर उधर, आगे है ही नहीं, दिखती नहीं है। फिर मैंने सोचा अगर वो नहीं होगी तो, क्योंकि वो मेरे साथ थी तो मैंने ना सेंटर का एड्रेस लिया था ना मेरे पास सेंटर का फोन नंबर था, तो मैंने सोचा कि क्या करेंगे, और दो घंटे के बाद पब्लिक प्रोग्राम है, शाम के 5 बजे थे, 7 बजे पब्लिक प्रोग्राम था सेंटर पर, तो नहीं मिली, आखिर नहीं मिली। आधा घंटा हो गया मुझे ढूंढते ढूंढते, कई आगे पीछे जगह पर मैं गई लेकिन नहीं मिली। तो ये बाबा की मदद कहेंगे, जब हम बाबा को याद करते हैं, तो मैं बिल्कुल घबराई नहीं, लेकिन मुझे संकल्प जरूर चला कि इस न्यूयॉर्क शहर में मैं कुछ नहीं जानती हूं और अगर मैं नहीं पहुंची तो क्या होने वाला है, एक बार मतलब मैंने उसको इमेजिन किया। फिर मैंने बाबा को याद किया और मैंने कहा प्रोग्राम है बाबा, आप जानो आपको मुझे कैसे पहुंचाना है, मुझे इस शहर का, क्योंकि मैं पहली बार आई हूं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। तो न्यूयॉर्क में प्रॉपर नहीं लेकिन अमेरिका में मेरा लौकिक भाई उस समय जैसे इंजीनियर जाते हैं जॉब करने के लिए ऐसे वो था, और उसने मुझे एक फोन दिया था कि इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़े तो आप यूज करना। तो उसका नंबर भी था मेरे पास, भाई का नंबर था और सेंटर का नंबर नहीं था। तो वो फोन मुझे मतलब जैसे कैसे टचिंग शुरू हुई एकदम, और मैंने अपना पर्स खोल के देखा तो जो बस से हमें वापस जाना था वो टिकट भी मेरे पास था। तो दो बातें तो पॉजिटिव हो गई जो मुझे पहुंचा सकती थी। तो मैंने पहले तो वो बस स्टॉप ढूंढा जहां से मुझे बस मिल सकती है, तो कुछ पुलिस वाले खड़े थे, उनकी हेल्प ली मैंने। मैंने उनको पूछा कि ये बस कहाँ आएगी, कौन से स्टॉप पर आएगी, तो उन्होंने गाइड कर दिया मुझे। मैं वहां जाकर खड़ी हो गई और बस आई, मैं चढ़ी उसमें। तो वो बस वाले ने मेरे को पूछा, सिस्टर वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? तो मैं सोचूं कहाँ जाना है मुझे एड्रेस तो मालूम नहीं है। तो मुझे मैनहट्टन सेंटर है इतना तो मालूम था, तो मैंने बोला मैनहट्टन। तो वो हंसने लगा, उसने कहा सिस्टर दिस होल एरिया इज मैनहट्टन, टेल मी वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? मैंने कहा और तो मुझे मालूम नहीं है, तो मैं चुप हो गई। फिर उसने कुछ बोला नहीं, वो दूसरे के पास चला गया और मैं सोचने लगी कि क्या करूं। फिर मैंने भाई को फोन लगाया और मैंने उसको बोला कि मैं न्यूयॉर्क में गुम हो गई हूं, तो आप नेट पर जाओ और न्यूयॉर्क का एड्रेस सर्च करो और वहां का फोन नंबर आपको मिलता है तो या तो आप बात करो नहीं तो मुझे फोन नंबर दो। इस तरह से मैंने उसको कहा। अब उसने ढूंढा, उसको न्यूयॉर्क का नंबर तो नहीं मिला, लंदन का मिल गया। उसने लंदन में फोन लगाया तो लंदन वालों को पता चल गया कि मैं न्यूयॉर्क में गुम हो गई। उन्होंने उनको न्यूयॉर्क का नंबर दिया। फिर उसने उसको नंबर मिला मेन सेंटर का जहां मोहिनी दीदी रहती है, लेकिन वो सेंटर नहीं था, मैनहट्टन दूसरा सेंटर था। माना सारे न्यूयॉर्क को पता चल गया कि मैं बाद में वो बहन जो सेंटर की बहन थी उससे बात हुई उसकी, और उसने मेरा नंबर उस बहन को दिया। एक्चुअली वो लोग भी बहुत चिंता में थे क्योंकि जो बहन मेरे साथ थी वो सेंटर पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसने भी मुझे ढूंढा, उसको मैं नहीं मिली, मैं उसको नहीं मिली। तो वो प्रोग्राम था इसके कारण सेंटर आ गई, उसने सोचा शायद मैं सेंटर चली गई होंगी क्योंकि बस का टिकट मेरे पास है, पर मैं पहुंची नहीं। फिर उसने मुझे फोन किया, तब तक मुझे याद आया कि जो सेंटर है उसके सामने एक बहुत लंबी बिल्डिंग बनी हुई है जिसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बोलते हैं, वो फेमस है वहां। तो सेंटर के सामने से ही वो दिखती थी, तो मैंने बस वाले को बोला कि जहां वो बिल्डिंग दिखती है वहां मुझे उतार देना। तो वहां तक हम लगभग पहुंचने वाले थे और जब मैं उतर गई वहां तब वो बहन का फोन आया, तो उसने मुझे पूछा आप कहाँ खड़े हो? तो मैंने कहा कि वो जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है वहां मैं उतर गई हूँ और वहां खड़ी हूँ। तो उसने कहा आप वहीं खड़े रहो, मैं भाई को भेजती हूँ, वो आपसे आपको पिकअप कर लेगा। तो भाई आया और उसने मुझे लिया और 7:15 पहले मैं सेंटर पहुंच चुकी थी। तो देखा बाबा ने पहुंचा दिया, क्योंकि बाबा को मैंने बोला था प्रोग्राम है, आप जानो कैसे मुझे 7 से पहले पहुंचाना है। और बिल्कुल 15 में मैंने चाय वाय पी के रिफ्रेश होकर के, 7 से थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन वो प्रोग्राम भी फिर किया। ऐसे ही कई बार हमारे हिसाब किताब आ जाते हैं हमारे सामने। हाँ, ये तो परिस्थितियां हैं जिसे हम कहेंगे कि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसमें सेफ्टी कैसे मिली हमें बाबा की याद से, जब पूरा निश्चय होता है हमारा, उसमें संशय का एक संकल्प भी नहीं होना चाहिए। अगर जरा भी हम क्यों क्या में चले जाते हैं, जैसे बाबा कहता है संशय में चले गए, तो फिर बाबा से हमारी वो लाइन क्लियर नहीं होती। और जितनी मदद हमें बाबा की अनुभव होनी चाहिए, जो शक्ति हमें अनुभव होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो एक मेरा अनुभव है कि हिसाब किताब जब हमारे सामने आता है, अब हम सभी को 63 जन्मों के हिसाब किताब यहाँ ही चुपतू करने हैं, तो वो मैंने अनुभव किया कि मैं एक बार सेवा से आ रही थी नागपुर से, अहमदाबाद में रात को देर से पहुंचे और वहां से बाय रोड निकले सवेरे, तो करीब 3-3.5 घंटे लगते हैं अहमदाबाद से आबू आने में, और आबू पहुंच चुके थे और मैं, क्योंकि रात देर हो गई थी तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई, और सेवा में भी कई बार बिजी ज्यादा होते हैं तो थके हुए होते हैं, तो मैं गाड़ी में सो रही थी, आगे की सीट पर ही बैठी थी ड्राइवर के बाजू में, लेकिन सो रही थी। तो वो ड्राइवर को भी या तो झपकी आई हो, क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो सो रही थी, लेकिन एक्सीडेंट हुआ हाईवे पर, और एक्सीडेंट में मुझे हेड इंजरी हो गई, सिर में चोट लगी और मैं सीधा बेहोश हो गई। सो रही थी और मुझे पता भी नहीं एक्सीडेंट हुआ, सीधा बेहोश हो गई। फिर वो लोग कैसे मुझे, मेरे साथ दो बहनें और थी अहमदाबाद की जो पीछे की सीट पर बैठी थी, वो लोग कैसे मुझे हॉस्पिटल लेकर आए यहीं, क्योंकि आबू रोड आ चुके थे तो ट्रॉमा में ही लाए यहाँ, और सब कुछ सूचरिंग वगैरह हुई, जो भी इंजेक्शंस देने थे वो सब लगे। एक घंटे के बाद मुझे होश आया, तब मैं देखने लगी कि मैं कहाँ हूँ, तो समझ में आया कि हॉस्पिटल में हूँ और मेरा एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन मैंने महसूस किया उसी समय, जैसे एक बहुत पावरफुल टचिंग थी, क्योंकि बाबा की याद में थी, जब मेरी आंख लगी, बाबा को याद कर रहे थे तो उसी में आंख लगी, तो कैसे बाबा ने मदद की, हिसाब किताब तो आया लेकिन पहले तो ये पता नहीं चला कि एक्सीडेंट हुआ, मेमोरी ही नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ। फिर दूसरा, जब आंख खुली तो तब तक सब कुछ हो चुका था, तो दर्द की एक पिन सुई चुभे ऐसी भी फीलिंग नहीं थी, और जो सामने वाले थे उनको मैंने देखा, क्योंकि काफी भाई बहने थे, मधुबन में रहते हैं तो इतने भाई बहने अपने काफी आ गए थे वहां देखने के लिए, और मैं, मेरी जो स्टेज थी, बाबा ने जो मुझे उस समय टचिंग दी, पावरफुल, जैसे आत्मिक स्थिति का अनुभव होता है, और एक ये अंदर से आ रहा था विचार कि सब ठीक हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी अंदर में, हालांकि मुझे कुछ नहीं मालूम कि क्या हुआ है, कितनी चोट लगी है, लेकिन जैसे बाबा की वो पावरफुल जैसे विचार मुझे आ रहा था, और जो लोगों के वाइब्रेशन मुझे दिख रहे थे वो थोड़े डर वाले दिख रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि ये क्यों डर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा था। फिर आईसीयू में रखा गया, तो आईसीयू में डॉक्टर्स ने जो देखा, उन्होंने कहा कि 72 आवर्स हमें ऑब्जर्वेशन में रखना है, और तब तक हम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि हेड इंजरी है, पहले सारे सीटी स्कैन वगैरह सब होंगे, उसके बाद ही कहा जा सकता है कि अब क्या करना है या क्या होगा। तो सीटी स्कैन हुआ तो देखो, वही लकीली अंदर की कोई चोट नहीं थी, जो भी चोट थी वो सब बाहर की थी, तो ये तो सूली से कांटा हो गया। हाईवे पर इतना एक बड़ा एक्सीडेंट, जो गाड़ी तो पूरी तरह से ऐसी हो चुकी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता कि जो इसमें सामने की सीट पर बैठा है वो बच भी सकता है, लेकिन सिर्फ बाहर बाहर की चोट थी। और आईसीयू में जो रखा 3 दिन, वो मुझे ऐसे लगा कि मैं कोई बेड पर नहीं हूं, जैसे बाबा ने मुझे अपनी गोदी में सुला रखा है। कोई फीलिंग नहीं, कोई पेन नहीं, कोई संकल्प नहीं क्यों ऐसा हुआ या ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बाबा ने मुझे क्यों नहीं बचाया, कोई थॉट्स चले जैसे कि प्लेन बुद्धि एकदम। और मैंने देखा उसने ही मुझे इतनी मदद की कि मैं सहज उस स्थिति से बाहर आ गई, और 10 दिन थी मैं हॉस्पिटल में, दस दिन के बाद जब वापस आई तो सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा
नॉर्मल,
कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बड़ी परिस्थितियां भी जो हमारे लिए सूली जैसी स्थितियां होती हैं, जो हमारे हिसाब किताब होते हैं, कई बार वो हमें सूली जैसे लगते हैं, लेकिन बाबा की याद की मदद जो छत्र छाया है वो कांटे जैसा अनुभव भी, मैं तो कहूंगी कांटा भी क्या, फूल जैसा अनुभव करा देती है, कि जैसे कि वो हमारे लिए फूल बन गए, या जिसको दूसरे शब्दों में बाबा कहता है तूफान तोहफा बन जाता है। आया तूफान लेकिन महसूस कैसे हुआ, तोहफा बन गया, क्योंकि उस पीरियड में मैंने ये अनुभव किया कि दैवी परिवार का प्यार और दुआएं क्या होती हैं। कितने भाई बहनों ने जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था योग किया उन्होंने, वो भी मैंने फील किया, मतलब वो फील करते हैं हम उस चीज को जो एनर्जी हमें मिलती है और जो बाबा की मदद हमें मिलती है। तो हम सबके होते हैं अपने अपने अनुभव, लेकिन छत्र छाया का अर्थ क्या है कि सदा अगर वो छत्र छाया है, जैसे बारिश में हम गए और हमने छाता लगाया तो बारिश अंदर नहीं आएगी, बारिश से हम सेफ हो जाएंगे, तो उस परिस्थिति में हम सेफ हो जाते हैं, वो अनुभव हमें होता है कि चाहे वो कैसी भी परिस्थिति है वो हमें सेफ बना देते हैं। तो अनेक प्रकार के आज हमारे सामने विघ्न होते हैं, स्वयं के भी विघ्न हैं, अपने आप के भी हैं, दूसरों के संस्कारों का भी कई बार हमारे ऊपर वार होता है, प्रकृति के भी पेपर हैं आज के समय में, प्रकृति भी अति में जा रही है, या हम कहेंगे आज जो भटकती हुई आत्माएं हैं, इवुल सोल्स हैं, उनका भी प्रभाव कई बार हो जाता है, जो तमोगुणी वाइब्रेशंस बाबा कहता है। तो ये सब हम सबके सामने अति के रूप में आने वाले ही हैं और इन पेपर्स को हमें क्रॉस करना ही है, लेकिन हम सहज क्रॉस तब कर पाएंगे जब सदा निरंतर बाबा की याद और उसका साथ, जिसको हाथ और साथ बाबा कहता है, उसका हाथ और साथ हमारे साथ है। अगर अपने लिए कुमारियों के लेवल पर सोचते हैं तो स्वयं के विघ्न क्या होते हैं, अपने ही देह अभिमान के विघ्न होते हैं, क्योंकि इस उम्र में जो यूथ एज होती है उसमें देह अभिमान अपने टॉप पर होता है। देह अभिमान माना अपनी ही देह की कॉन्शियसनेस, अब उसमें जो भी देह से संबंधित पर्सनालिटी है हमारी, अब वो पर्सनालिटी हमें अपनी कैसी रखनी है, तो अगर हम ज्यादा बॉडी कॉन्शियस में जाते हैं तो सुंदर दिखने की कोशिश करना, अपने बालों को आजकल लोग तरह तरह से बाल बनाते हैं, अपने कपड़े आज के फैशन के अनुसार कैसा कपड़े लेटेस्ट फैशन कौन सा चल रहा है, वैसे हमारी ड्रेस हम आधुनिक दिखें, कहीं पीछे ना दिखें किसी भी रूप में, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, तो जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं वैसा ही मुझे भी, मेरा भी वैसा ही होना चाहिए, दूसरों से थोड़ा कंपेयर भी हम करते हैं, ये सब देह अभिमान है। तो ये देह अभिमान के संस्कार इस उम्र में बहुत अधिक हमारे लिए ही विघ्न बन जाते हैं, लेकिन अगर ये संस्कार हमारे हैं तो फिर माया भी फुल फोर्स में हमारे ऊपर आ सकती है, क्योंकि देह अभिमान नहीं कहते हैं माया की या विकारों की जड़ है, और आत्म अभिमान ही आत्मिक गुणों का अनुभव कराता है। तो यहां जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना हमें बाबा की मदद उस देह अभिमान से ऊपर उठा देती है। तो आत्मिक स्थिति में रहने से हमारी खुद की दृष्टि वृत्ति शुद्ध हो जाती है, अगर दूसरों को भी हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो फिर उनके पर्सनालिटी का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। कोई जरूरी नहीं है भाइयों की ही बात हो, बहनों का भी बहनों के ऊपर पड़ता है ना, आपस में हम जीन्स भी एक दूसरे के आकर्षण में आ सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो किसी भी देहधारी से प्रभावित होना, उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होना, बाबा तो यहां तक कहता है गुणों से भी प्रभावित होना। तो अगर हम किसी देहधारी से प्रभावित हुए तो फिर हमारा लगाव झुकाव उसकी ओर हो जाएगा, और अगर लगाव झुकाव उस ओर हुआ तो मन कमजोर होगा, क्योंकि उस आत्मा के संकल्प मन में ज्यादा चलेंगे, बाबा से हमारा योग टूटने लगेगा। और अगर बाबा से योग टूटा, उसकी निशानी है, जैसे ही हम योग में बैठेंगे बाबा याद नहीं आएगा। कौन याद आएगा? जिसके प्रति लगाव झुकाव है, जिससे हम प्रभावित हो गए, वो प्रभावित करने वाली आत्मा हमारे सामने आती रहेगी। तो जो बाबा से शक्ति भरनी चाहिए हमारे अंदर, वो शक्ति नहीं भरेगी। तो सबसे बड़ा विघ्न कुमारी जीवन में इसे हमें पार करना होता है। तो हम मेरे जीवन का अनुभव शेयर करना चाहूंगी कि हम भी कॉलेज में पढ़ते थे, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे और को एजुकेशन में पढ़ते थे, और फ्रेंड्स थे, जैसा फ्रेंड सर्कल होता है, जैसे ही छुट्टी हुई रेस्टोरेंट में खाने जाना है या सिनेमा देखने जाना है या कहीं पिकनिक पर जाना है सब। लेकिन कॉलेज में जैसे ही मैं आई थी, मेडिकल कॉलेज में हमें ज्ञान मिला, और जैसे ही ज्ञान मिला समझ में आ गया कि सच्चा सुख क्या है, अतींद्रिय सुख क्या है, क्योंकि बाबा की याद से जो सुख मिलता है वो इन सब चीजों से मिलने वाले सुख से बहुत अलग है। तो पहले मैं जाती थी उनके साथ, लेकिन जब मुझे ये अनुभव होने लगा, जब बाबा ने जो हमें नियम मर्यादा दिए हैं उनका मैं पालन करने लगी, तो मैंने उनके साथ वो सब जाना बंद कर दिया। और मैंने ये देखा कि मुझे इच्छा भी नहीं होती थी, मेरी बुद्धि भी नहीं जाती थी कभी कि ये लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं या रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं तो मैं भी जाऊं। भले ही फिर उन्होंने मेरा नाम सन्यासी रख दिया कि अब तो ये सन्यासी बन गई, ये हमारे साथ नहीं आएगी, लेकिन मुझे वो बुरा भी नहीं लगता था। वो मुझे कमेंट करते थे तो बुरा भी अनुभव नहीं होता था। तो मैंने ये देखा कि अगर हमें कुछ ऊंची प्राप्ति हो जाती है तो जो ऐसे नहीं कि घूमने फिरने का सुख नहीं होता है या अच्छे कपड़े पहनने का सुख नहीं होता है या अपनी पर्सनालिटी को अच्छा रखने की खुशी नहीं होती है, वो सब भी होता है, लेकिन उससे भी जो श्रेष्ठ सुख है, उससे भी जो श्रेष्ठ प्राप्ति है, वो अगर हो गई तो उसमें फिर हमारी बुद्धि नहीं जाती है। जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं भौतिक चीजों में लोगों को प्राप्ति होती है। अगर किसी के पास आज स्कूटर है और उसके पास कार आ जाए तो क्या यूज करेंगे? ज्यादा कार यूज करेंगे, क्योंकि कार स्कूटर से ऊंची प्राप्ति है, तो स्कूटर अपने आप छूट जाएगा। या हम देखते हैं कि पहले लोगों के पास सीडी MP3 हुआ करते थे, हाँ, लेकिन फिर पेन ड्राइव आ गए, पेन ड्राइव ज्यादा सुविधाजनक है, तो क्या हुआ? वो अपने आप छूट गए, क्योंकि उससे अच्छी प्राप्ति जब सामने आई तो वो हम एडॉप्ट कर लेते हैं और जो कम है वो अपने आप छूट जाता है। तो ऐसा ही जब बाबा का जो सुख हमें मिलता है, बाबा की याद में जो सुख अनुभव होता है, वो सुख इन सब इंद्रिय सुखों से बहुत श्रेष्ठ सुख है। और फिर बुद्धि अपने आप नहीं जाती है, ड्रेस की तरफ बुद्धि जाए मेरी या और भी जो भी फैशन की चीजें हैं उन पर मेरी बुद्धि जाए। आप में से बहुत कुमारियों को अनुभव होगा ये। खाने पीने का शौक होता है, लेकिन आज हम कितनी भी बाजार में जाएंगे, बहुत अच्छी चीजें जो हमें बहुत, जिसके बिना हम रह नहीं सकते थे, और वो आज ज्ञान में आने के बाद छूट गई तो जाती है बुद्धि कि मुझे यहाँ खड़े होकर खा लेना चाहिए, नहीं जाती। तो ऊंची प्राप्ति हो गई तो अपने आप वो छूट जाता है। तो बाबा की याद का सुख अपने आप ये देह अभिमान से मिलने वाले इंद्रिय सुखों से हमें मुक्त कर देता है। फिर अगर दूसरों के संस्कार, कई बार होता है जब हम एक दूसरे से व्यवहार में आते हैं तो फिर संस्कारों का टकराव होता है, तो यहां बाबा हमें कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो कल्याणकारी है। क्यों कल्याणकारी है? क्यों कल्याणकारी है? इसमें कई बातें बाबा ने हमें समझाई है, क्योंकि जितना हम ज्ञान का चिंतन करते हैं, जितना हम शुद्ध चिंतन करते हैं, उतना सहज विघ्नों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम व्यर्थ संकल्पों में चले जाते हैं क्यों ऐसा करते हैं, और अगर कोई ज्ञानी आत्मा ऐसा करती है तब तो बहुत ही ज्यादा व्यर्थ संकल्प चलाते हैं कि हमने तो सोचा ही नहीं था, हाँ ये ज्ञानी होकर के भी इस तरह से बात करेंगे, या ये इस तरह से क्रोध करेंगे, या ये इस तरह से मेरे से ईर्ष्या करेंगे, जो भी व्यवहार दूसरों से मिलता है। तो समझानी दीदी बाबा ने, एक तो वैरायटी ड्रामा है, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, तो साक्षी होकर के देखना है, एक ना मिले दूसरे से। जैसे एक पेड़ के पत्ते सब भले एक जैसे हैं लेकिन फिर भी अलग अलग हैं, ऐसे ही हम सब आत्माएं वैरायटी हैं। तो मुझे अपने पार्ट को देखना है, दूसरों के पार्ट से प्रभावित नहीं होना है। और दूसरा, जो हिसाब किताब हमने अनेक जन्मों में बनाए हैं वो हिसाब किताब हमें इस अंतिम जन्म में सब चुकतू करने ही हैं। तो वो आत्मा से मेरा कर्जा पूरा हुआ तो कर्जा चुकतू होता है तो खुशी होती है ना, खुशी होती है ना कि मेरा कर्जा चुकतू हो गया, हम हल्के हो गए। तो मानो किसी ने मेरी इंसल्ट भी कर दी तो भी मुझे सहन कर लेना है, और अगर मैंने सहन कर लिया तो उसमें दुआएं हैं बाबा की, क्योंकि बाबा की श्रीमत के अनुसार हम सहन कर रहे हैं। तो जब हम सहन करते हैं तो ही हम सहन शाह बनते हैं, ये बाबा हमें सिखाता है। तो सहन हम बाबा की आज्ञा के कारण करते हैं, ऐसे नहीं कि मैं कब तक दबती रहूंगी। आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन की ये सोच है, क्योंकि ज्यादातर हम अपने को बहुत होशियार समझते हैं, क्योंकि एजुकेटेड हैं, लर्नेड हैं, हर एक अपने अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में हैं जो क्वालिफाइड हैं, तो जो भी हमारे से थोड़े वरिष्ठ हैं, पुराने हैं, वो उतने एजुकेटेड नहीं हैं। हर जनरेशन में ये फर्क आया है, क्योंकि जो लास्ट में आने वाली आत्माएं हैं उन्हें फास्ट जाना है, ये ड्रामा में बाबा ने विधि रखी हुई है। तो वो फास्ट जाने के अनुसार ये युक्ति है कि जो लास्ट वाली आत्माएं हैं वो किसी ना किसी रूप में उस तरह से बुद्धिशाली होंगी जो बाबा के ज्ञान को तुरंत कैच करेंगी और तुरंत पुरुषार्थ में गैलप करके संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लें। तो कई बार फिर हम उन आत्माओं का सामना करने लगते हैं, हम सोचते हैं हम तो इनसे ज्यादा जानते हैं, ये तो इतना नहीं जानते हैं। तो अगर उनकी बात हमें पसंद नहीं आती तो फिर चाहे माता पिता भी हों, माता पिता भी हमसे कम पढ़े लिखे होते हैं, वो अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना रखते हैं कि उन्हें अपने से अधिक पढ़ाते हैं, अधिक ऊंचा बनाने की भावना रखते हैं, लेकिन फिर बच्चों में अगर वो अभिमान आ जाता है तो माता पिता का भी कई बार सामना करने लगते हैं। फिर वही संस्कार जब हम सेवा में आते हैं, ब्राह्मण परिवार के संगठन में आते हैं तो इमर्ज हो जाते हैं। तो यहां हमें ध्यान रखना है इस बात का कि जो बाबा की श्रीमत है, देह विमान के संस्कार नहीं, लेकिन जो बाबा ने मुझे संस्कार दिए हैं, जो बाबा ने मुझे नम्रता और मधुरता के गुण दिए हैं। सेवाधारी माना क्या, मैं सेवाधारी हूं, बाबा ने मुझे सेवाधारी बनाया है। तो जो हांजी का पाठ पढ़कर सेवा करते हैं, चाहे मुझे गलत भी लगती है, कोई मेरे से वरिष्ठ हैं उनकी बात चाहे मुझे गलत भी लगती है, लेकिन मुझे क्या कहना है, हाँ जी कहना है, उस समय हाँ जी कहना है, फिर बाद में भले अपनी बात कहनी है तो उन शब्दों में कहूं। तो जो हमसे बड़े हैं उनके साथ सदा सम्मान, नम्रता, मधुरता का व्यवहार हो, हम उनकी आज्ञा अनुसार चलें तो उनकी दुआएं हमें मिलती हैं। बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो बाबा की दुआएं हमें मिलती हैं, वो दुआओं का स्टॉक भी हमारे लिए छत्र छाया बन जाता है। और जो हमारे बराबर वाले हैं उनके प्रति भी हमारा व्यवहार ऐसा हो जिससे हमें दुआएं मिले। बाबा हमेशा कहता है दुआएं दो, दुआएं लो। कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा है कि मानो आपको जो सेवाएं हैं दूसरी, मानो कहीं क्लासेस कराना है या कोई बड़े बड़े प्रोग्राम करना है, वो नहीं आता है या वो चांस नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति है, मानो हम नौकरी करते हैं या कुछ भी ऐसा बंधन है हमारा कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के वो सब सेवाएं नहीं कर सकते जो एक ब्रह्मा कुमारी बहने करती हैं, तो भी अगर हमने ये भी कर लिया कि सदा दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है, तो भी हमारे फुल मार्क्स जमा होंगे। सुख देना है और सुख लेना है, ये सबसे बड़ी ब्राह्मण जीवन की उपलब्धि है। संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है, ये सब दुआएं लेने का आधार है। और ऐसे ही कुछ स्लोगन्स और कुछ स्वमान की बातें अगर हम याद रखते हैं, शुद्ध चिंतन का आधार है जो बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं, उन्हें हम स्मृति में रखें तो हम महसूस करेंगे कि बाबा सदा मेरे साथ हैं और बाबा की छत्र छाया सदा ही मुझे है, और कभी भी विघ्न विघ्न नहीं लगेगा, जैसे कि खेल की तरह हमने उसे पार कर लिया। मुझे याद है प्रकृति के भी जैसे कहीं भूकंप आ जाते हैं, कहीं बाढ़ आ जाती है, ऐसे तो आजकल हर साल कोई ना कोई ऐसे बड़े रूप में कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आती ही है दुनिया में। तो ऐसे ही दो तीन साल पहले अमेरिका जाना हुआ था मेरा, और वहां ह्यूस्टन एक शहर है जहां पर तूफान आया था, बहुत बड़ा तूफान जिसको वो हरिकेन बोलते हैं। तो बहुत पानी, तूफान माना फिर बारिश भी होगी, पानी भरेगा, तो जैसे बाढ़ आ गई उस शहर में। तो मेरे को उस शहर में जाना था तो पहले से ही मुझे मना कर रहे थे कि मत जाओ क्योंकि वहां बहुत बाढ़ आई हुई है, तो आप भी फंस जाओगे अगर आप जाओगे। तो मैंने कहा नहीं, प्रोग्राम बना हुआ है और मुझे तो बाबा के ऐसे बहुत से अनुभव हैं जो मैंने सुनाए आपको, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे जाना है, चाहे जो भी हो बाबा साथ में है, बाबा अपने आप कराएगा जो बाबा को कराना है। तो मैं गई वहां और मैंने देखा कि जिस स्थान पर हमें जाना था वहां से करीब कुछ किलोमीटर तक कोई प्रभाव नहीं था बाढ़ का, वो एरिया बिल्कुल सेफ था। तो वहां पर जो परिवार थे जिनकी सेवा के निमित्त हम गए थे, तो वहां एक परिवार से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि जब हमें पता चला, क्योंकि पहले से फोरकास्ट हो जाता है आजकल तो मौसम का, पहले से बता देते हैं ना कि बाढ़ आने वाली है, तूफान आने वाला है, तो बोला जब पहले से फोरकास्ट हो गया कि आने वाला है और कुछ पता नहीं था कि उसका असर कहां कहां तक जाएगा, तो बोला हमने उसी दिन से बाबा के कमरे में बैठ करके अमृत वेले योग करना शुरू कर दिया। बाबा कहते हैं ना, आप प्रकृति पति हो, प्रकृति जीत हो, इस तरह से इस स्वमान को लेकर के हमने योग करना शुरू कर दिया और दो तीन दिन के बाद ही वो तूफान आ गया। तो वो सिर्फ वही एरिया जहां वो बाबा का स्थान था और जहां वो बाबा के बच्चे थे आसपास, उतने ही एरिया में पानी नहीं भरा, बाकी पूरे शहर में पानी भरा। तो देखिए, बाबा नहीं कहता कई बार बिल्ली के पुंगरे भी सेफ रह जाते हैं, है ना, भले कितनी भी आग की भट्टी हो, एक कहावत है, तो वो कैसे सेफ रह गए। और ये तो एक अनुभव सुनाया मैंने, ऐसे कितने अनुभव हम सुनते हैं। भुज में भूकंप आया था, तब वहां एक परिवार एक बिल्डिंग में था और भूकंप आया, वो तो भूकंप तो मिनट्स का होता है, उसमें तो ज्यादा कुछ सोच नहीं सकते, और जो मल्टी स्टोरी में रहते हैं वो कैसे भागकर उतरेंगे। तो वो परिवार ऐसे मल्टी स्टोरी में रहता था और जब उनको पता चला इतनी तेज भूकंप आ रहा है तो अब उतर तो नहीं सकते, तो बाबा तो एवर रेडी अचानक की बात कहता है, तो बोला ठीक है हम तैयार हैं, बाबा हमें ले जाए, तो भी हम बाबा के कमरे में जाकर बैठ गए। वो जो फैमिली थी वो सबके सब बाबा के कमरे में बैठ गए, उनके घर में जो बाबा का कमरा था। कि बाबा की याद में बैठे हैं, जाएंगे तो भी बाबा के पास जाएंगे अगर बिल्डिंग गिर भी गई तो। लेकिन हुआ ये कि आसपास की सारी बिल्डिंग गिर गई और वही बिल्डिंग नहीं गिरी और बाबा के कमरे को कुछ नहीं हुआ। तो बाबा ने क्या किया, बाबा की याद थी तो सेफ्टी की छत्र छाया बन गई। लेकिन कई बार क्या होता है, हम बाबा को याद करना ऐसे समय पर भूल जाते हैं और दूसरे सहारे हमें याद आने लग जाते हैं। जैसे वो उसका मिसाल सुनाते हैं ना द्रौपदी का, अब समय ऐसा भी है कि जब हम बाहर जाते हैं ऐसे तमोगुणी वातावरण में, आज ऐसी आत्माएं हैं दुनिया के अंदर जिनको बाबा कीचक कहता है, माना क्रिमिनल आई होती है, उनकी दृष्टि वृत्ति अच्छी नहीं होती है। अपने को तो हमें पवित्र रखना ही है, अगर हमारी पवित्र दृष्टि वृत्ति है तो हमारी पवित्रता के प्रभाव से अन्य आत्माएं बदल जाती हैं। ये तो शुरू से, यज्ञ के शुरू से अपनी बहनों का अनुभव है, क्योंकि बहनों की संस्था रही है तो बहनों की संस्था में जो लोग आते रहे वो कई बार यही सोच करके आते रहे, वो उनको ये नहीं पता था कि यहाँ इतना ऊंचा ज्ञान सुनाया जाता है, लेकिन ये बहनों की संस्था है माना चलो इसी भाव से अंदर चले गए। लेकिन जब वहां जाकर के बहनों से ज्ञान सुना तो जीवन में परिवर्तन आ गया। तो आने वाला जो समय है उसमें ऐसी कई स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि हमारा ऐसे लोगों से सामना हो जाए। तो बाबा कहता है कि हमारी पवित्रता की पावर ऐसी होनी चाहिए, अगर हमारा लाइट हाउस का अभ्यास है, अगर हम उसी समय अपने आप को लाइट के कार्ब में ले जाएं, जो फरिश्ता स्थिति बाबा कहता है, तो वो लाइट के कार्ब से उस आत्मा को भी वही साक्षात्कार होगा, वो शरीर दिखेगा ही नहीं, उसको लाइट ही दिखाई देगी और मतलब उसकी बुद्धि दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। जैसे वो दिखाते हैं कि बाबा को मारने के लिए आया था सरदार जी, लेकिन बाबा को देख करके उसे साक्षात्कार हो गया और वो मार नहीं पाया बाबा को, सेफ्टी हो गई। बाद में उसने रियलाइज भी कर लिया कि बाबा मैं तो आपको मारने आया था। तो कोई ऐसे वार करने वाले भी अगर गलती से आएंगे हमारे सामने, अगर हमारी स्थिति इतनी ऊंची होगी, हमारी स्मृति श्रेष्ठ होगी, बाबा साथ है हमारे, तो कैसे भी हम सेफ हो जाएंगे। वो भगवान की जिम्मेवारी है कि वो उसको क्या दिखाएगा, क्या अनुभव कराएगा, लेकिन हमें बाबा सेफ कर लेगा। तो हम जो स्वमान की बातें स्मृति में रखें जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, एक तो विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो बाबा कहता है सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और दूसरा मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी अकाल तख्त नशीन हूं, सो बाबा के दिल तख्त नशीन हूं। तो जो स्व स्थिति में रहते हैं उनकी परिस्थिति पर विजय निश्चित है। फिर मैं सदा बाबा के साथ कंबाइंड शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूं। जब शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप याद रहेगा तो बाबा तो मेरे साथ ही है, मेरी शक्तियां इमर्ज रूप में हैं। फिर मैं बालक सो मालिक हूं, बाबा के सर्व खजानों की मैं मालिक हूं। तो हमेशा अपनी प्राप्तियों को याद रखना है, कभी भी अपनी कमी कमजोरियों को स्मृति में नहीं रखना है। और कुछ स्लोगन्स हम याद रखें, एक तो बाबा कहता है हिम्मते बच्चे मददे बाप, हिम्मत रखेंगे तो मदद मिलेगी, अगर हिम्मत नहीं रखी, हिम्मत हार गए, अगर अपने कमजोरियों के संकल्प में चले गए तो बाबा की मदद अनुभव नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है, कई लोग कहते हैं कि हम तो महसूस करते हैं ये स्थिति आई, मैंने बाबा को याद किया लेकिन बाबा की मदद तो मिली नहीं। मिली क्यों नहीं, मेरी अपनी कमजोरी है, जो हिम्मत मुझे रखनी चाहिए वो हिम्मत हम नहीं रखते हैं, जो संकल्प बाबा ने हमें दिए हिम्मत के वो संकल्प हम नहीं करते। अपनी कमजोरी के संकल्प, दूसरों की कमजोरी के संकल्प, क्यों क्या के संकल्प प्रश्न चिन्ह में हम चले जाते हैं। मुझे याद है कि मैं जब ज्ञान में आई तब मेरे परिवार वालों का बंधन था। मेरे पिताजी सख्त खिलाफ थे कि मुझे ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना है, लेकिन उस समय हम बाबा से मिले तो बाबा पर्सनल मिलता था उस समय, तो पर्सनल मीटिंग में स्टेज पर बाबा के सामने आए तो हमारी टीचर ने कहा, क्योंकि मैं मेडिकल पढ़ रही थी और मेरा फाइनल ईयर था, तो हमारी टीचर ने बाबा को कहा, बाबा ये बहुत बंधन वाली कुमारी है, आप में से भी कई कुमारियां होंगी जो ऐसे बंधन वाली होंगी। हाँ, तो बाबा ने मुझे कहा कि जहां हिम्मत है, जहां लगन है, वहां कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। विघ्न ऐसे होता है जैसे मक्खन से बाल, और उसके बाद सचमुच ऐसा ही हुआ। मैं गई क्योंकि बाबा ने कह दिया तो मैं निश्चिंत हो गई, और मैंने फिर कोई संकल्प भी नहीं किया, और रोज अमृत वेले मैं अपने माता पिता को सकाश भी देती थी, जो मनसा सेवा हम कहते हैं। तो मैंने देखा एक महीने के अंदर अंदर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, तुमको अगर ये अच्छा लगता है तो तुम भले करो, हम तुमको मना नहीं करेंगे। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। तो लगन है, अगर बाबा से लगन है तो कोई विघ्न ठहर नहीं सकता, बहुत सहज। आज सुगात है, सुगात है आज। आपके कुछ प्रश्न हैं तो मुझे कह रही हैं कविता बहन कि इन प्रश्नों के ऊपर भी हम थोड़ा सा आपको विचार करेंगे। तो एक तो हिम्मत और लगन की बात, कि हिम्मत कभी नहीं हारनी है, अपने से कभी दिल शिकस्त नहीं होना है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी। अपने ही मन का बंधन हो जाता है, कोई दूसरे के बंधन हमें नहीं रोकते हैं। अगर मेरा दृढ़ निश्चय है किसी बात को लेकर के तो कोई मुझे रोक सकता है? इसीलिए बाबा कहता है दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो अगर मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे ये जीवन अपनानी है, ये जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है, और जो बाबा हमें वर्षा दे रहा है, जो बाबा हमें खजाने दे रहा है, वो मुझे पूर्ण प्राप्त करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं देती। इसीलिए कहते हैं जहां चाह है वहां रहा है, रास्ता निकल ही जाता है। लेकिन अगर मेरे ही मन का बंधन है, मेरा ही मन कमजोर है, तो लोग लाख कोशिश कर लें, कोई मुझे नहीं बना सकता। बना सकता है? नहीं बना सकता। तो अपनी ही दृढ़ता सफलता को लाती है। और हम याद रखें निश्चय बुद्धि विजयंती, सदा निश्चय है तो विजय है। बाबा पर निश्चय, कभी भी संकल्प मात्र भी संशय नहीं आना चाहिए कि बाबा तो निराकार है, बाबा तो परम धाम में बैठा है, पता नहीं पता नहीं, साकार साथी तो है नहीं। लेकिन बाबा से हमारा सर्व संबंधों का अनुभव और बाबा से प्राप्तियों का निश्चय, वो हमारा दृढ़ होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हमेशा हम चिंतन में लाएं जब भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं। अच्छा, ये प्रश्न आया है, अगर किसी आत्मा के साथ अपना कार्मिक अकाउंट जल्दी खत्म करना है तो कैसे करें? मैं उस आत्मा को अपनी लाइफ में नहीं चाहती। तो कैसे खत्म करेंगे कार्मिक अकाउंट? जितना हमारा पावरफुल योग होगा, योग बल ही हमारे विकर्म विनाश करता है, साधारण योग नहीं। तो अपनी योग को ज्वालामुखी योग के स्तर पर ले जाओ, योग अग्नि। जितना लगन में हम मगन होते हैं, बाबा के बीज रूप स्थिति का अनुभव करते हैं, तो वो हमारे अकाउंट्स खत्म होते हैं और उसमें हमारा परिवर्तन होता है। उस आत्मा का परिवर्तन हो जाए ये आशा नहीं रखनी है। हम क्या सोचने लगते हैं कि वो परिवर्तन हो जाए, लेकिन यहां बाबा ने हमें सिखाया स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो मुझे शुभ भावना रखनी है, उस आत्मा के प्रति मेरा व्यवहार सुख देने वाला होना चाहिए। तो जब मेरे वाइब्रेशन, मेरी वृत्ति बदलेगी, चलो मैं बोल नहीं सकती, बोलना नहीं चाहती, ऐसा होता है कि कुछ लोगों से हम बातचीत नहीं करना चाहते, दूर रहना चाहते हैं, पर कम से कम अपनी वृत्ति तो शुभ रख सकते हैं, उनके प्रति भावनाएं तो शुभ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो जितना आपकी भावनाएं शुभ होंगी, श्रेष्ठ होंगी, धीरे धीरे उस आत्मा की वृत्ति भी आपके प्रति परिवर्तन होती जाएगी। और फिर देखो आपको लगेगा कैसे आपने बातचीत शुरू कर दी और कैसे आपके संबंध ठीक हो गए, आपको भी पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से हम आत्माओं से कार्मिक अकाउंट खत्म कर सकते हैं। बड़े अगर व्यर्थ बातें करते हैं सेवा के दौरान तो उन्हें कैसे समझाएं? मैं तो छोटी हूं, हमें समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बाबा ने साक्षी होकर के देखना भी सिखाया है। साक्षी स्थिति का अभ्यास, यानी दूसरी आत्मा क्या पार्ट बजा रही है, उसकी क्या कमी है, वो मुझे देखने की परमिशन दी है बाबा ने? दी है, उनके कर्म है। अगर वो व्यर्थ बातें कर रही है तो उनके अपने कर्मों का हिसाब किताब है। मुझे अगर मैंने देखा तो वही अवगुण मैं भी धारण कर रही हूं। बाबा कहता है अगर दूसरे की कमियों पर मेरी नजर जाती है तो कहीं ना कहीं फिर वो कमी मेरी हो जाएगी। तो इसीलिए गलती से भी दूसरों की कमियों पर नजर नहीं रखना, उनके गुण भी हैं। अगर बाबा ने उन्हें निमित्त बनाया है तो उस निमित्त आत्मा में कोई ऐसा विशेष गुण है, तभी वो आत्मा उस स्थान पर है। तो हम उनके गुण देखें, तो गुण देखेंगे तो फिर उनकी व्यर्थ बातों पर, हर एक के अंदर कमियां और गुण दोनों ही हैं, हमारे अंदर भी होंगे। चलो हम व्यर्थ बातें नहीं करते हैं, कोई दूसरी तरह की कमी होगी हमारे अंदर। तो हर आत्मा के गुण विशेषता हैं, पर हमारी नजर कहां जानी चाहिए? कहां जानी चाहिए? गुणों पर, विशेषताओं पर। योग में फरिश्ता स्वरूप और बीज रूप की विजुलाइजेशन कैसे हो? योग में फरिश्ता स्वरूप और बीज रूप की विजुलाइजेशन, आपकी योग की अवस्थाओं पर क्लास हुई है? हुई है? नहीं हुई है। अच्छा, तो फरिश्ता स्वरूप डबल लाइट स्वरूप है। डबल लाइट देखने का मतलब अपने को आत्मा लाइट देखना, और साथ साथ ये जो हमारा शरीर है इस शरीर को भी प्रकाश की काया में देखना है। और सूक्ष्म वतन में हम ब्रह्मा बाबा के साथ लाइट के शरीर में, जैसे बाबा लाइट है लाइट के शरीर में, ऐसे मैं आत्मा भी उस लाइट के आकार में हूं, ऐसे अनुभव करें। वो फरिश्ता स्थिति है, जिसको अव्यक्त स्थिति भी कहते हैं। और बीज रूप स्थिति, जब हम परम धाम में बाबा के साथ, निराकार शिव बाबा के साथ जब हम योग करते हैं, तो मैं आत्मा भी बिंदु रूप, शिव बाबा भी बिंदु रूप, और शिव बाबा की किरणें, शिव बाबा का प्रकाश लाइट मुझ आत्मा को मिल रही है। जैसे हम महसूस करते हैं कि बाबा की किरणों की फाउंटेन के नीचे मैं हूं, पूरी एकाग्रता में जब सिर्फ बाबा और मैं, जब ये अनुभव हमारा होता है तो वो बीज रूप स्थिति है। लेकिन निराकारी स्थिति जिसमें हम देह के संबंधों, देह के पदार्थों से पूरी तरह से डिटैच हैं, ना देह की स्मृति होती है, ना देह के संबंधों की स्मृति होती है, और ना ही देह के कोई पदार्थों की स्मृति। और ये योग पावरफुल योग होता है, इस योग को ही ज्वालामुखी योग कहते हैं और इस योग से ही विकर्म विनाश होते हैं। जो हम कहते हैं कि अभी किसी ने पूछा था ना कार्मिक अकाउंट की बात, तो अगर हमें कार्मिक अकाउंट अपने खत्म करने हैं, संस्कार परिवर्तन करने हैं, तो ये वाला योग, बीज रूप स्थिति का योग, हर दिन कम से कम आधा घंटा हम अवश्य करें, चाहे वो अमृत वेले करें चाहे वो शाम को करें, लेकिन ये पावरफुल योग हमें अवश्य हर दिन करना है। फिर एक प्रश्न है, मेरी आयु 49 ईयर है, मैं समर्पित होना चाहती हूं, सर्विस करती हूं, क्या समर्पित हो सकती हूं? अब वो सर्विस छोड़ के समर्पित होना चाहते हैं या सर्विस करते हुए समर्पित होना चाहते हैं, ये सोचना पड़ेगा। वैसे तो दोनों तरह से ही समर्पित हो सकते हैं। अगर एक्टिव हैं, सेंटर पर सेवाएं दे सकते हैं अपनी हर तरह से, तो मैं समझती हूं कि समर्पित होने में कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपकी निमित्त बहन आपको छुट्टी देती है तो आप समर्पित हो सकते हैं।